जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरीवर धरी, गोपी जन बल्लभ गिरीवर धरी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बन चरी, जमुना तीर बनाचरी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरीवर धरी, गोपी जन बल्लभ गिरीवर धरी, यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बन चरी, जमुना तीर बन चरी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा Hare Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Ram Hare Hare Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Sapitanena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vande Aham Sri Guruho Sri Yutapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavamsha Sri Rupam Sagdajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamsha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Vrindaranya Kalpa Dramadaha Srimad Ratnagara Singhasanastho Radha Srila Govinda Devo Prasthalihi Sevyamano Smarami Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జయ ఓం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యష్ట దర్శత శ్రీ శ్రీమద్ ఇస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీ భక్తి విదాన్ స్వామి శ్రీ ప్రభుపాద్ కీ జాయ్. అనంత కోటి వైష్ణవృంద కీ జాయ్. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకుర్ కీ జాయ్. ప్రేమ్ సి కహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసు గౌర్ భక్తవృంద కీ జాయ్. శ్రీ రాధ గోవింద దేవ కీ జాయ్. గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జాయ్. శ్రీ ప్రభుపాద్ కీ జాయ్. నితాయ గౌర్ ప్రేమానందే. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. आप सभी हरि हरि. इसका आवाज यहां से आवाज नहीं आता. यह सभी उपस्थित हरे हरे उपस्थित भक्तों का मंदिर के भी भक्त और आप गृहस्थ भक्त कांग्रेगेशन के भक्तों का भी स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद्भागवत कक्षा में. నిత్యం భాగవత సేవయా. శ్రీల ప్రభుపాద హమే యే విధి భాగవత శ్రవణ కి విధి దియే హై. అనిత్యం అనిత్య ప్రతి భాగవత్ కి సేవ, భాగవత్ కా శ్రవణ్ ఈ భాగవత్ కి సేవ హై. శ్రీల ప్రభుపాద్ సమజాతే వహా జహా శ్లోక్ ఆతా హై నిత్యం భాగవత సేవయా. తో ప్రభుపాద్ కే దో భాగ, దో ప్రకార కే భాగవత్. ఏ గ్రంథ భాగవత్, దూసరే వ్యక్తి భాగవత్. దోనో కి సేవా, గ్రంథ భాగవత్ కి సేవా ఆర్ వ్యక్తి భాగవత్ కి సేవా, మహాభాగవత్ కి సేవా, నిత్యం భాగవత సేవయా. ఆజ్ యే పాంచవే స్కంద్ కా అధ్యాయ 26వా హై, జో ఇస్ స్కంద్ కా అంతిమ అధ్యాయ భీ హై. ఔర్ ఇస్ పూరే అధ్యాయ మే నారకీయ లోకోం కా వర్ణన్ సున్నే కా సౌభాగ్య, ఇస్కే అధ్యయన్ కా సౌభాగ్య హం సభీ కో ప్రాప్త హై. క్రమశః అధ్యయన్ భాగవత్ కా బతాయే హై, తో दसवें स्कंद में तो भगवान की लीलाएं, फिर रास क्रीड़ा मधुर लीला की ओर तो दौड़ने का मन करता है, मधुर लीला कुछ अमृत नेक्टर कहते नेक्टर, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइजन कहो। कुछ जहर, लेकिन वैसे ये अमृत के अंतर्गत ही है ये वर्णन भी नारकीय, ताकि हम मुड़ेंगे अमृत की ओर। ये नारकीय लोगों का जो वर्णन है, साक्षात सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम का, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से अमृत झर रहा है, निस्रित हो रहा है। तो पूरे भागवत को जो द्वादश स्कंदीय भागवत, उस सभी को अमृत कथा अमृत ही कहा है। इन्हें के दसवें स्कंद में अमृत है और पांचवें स्कंद में और कुछ है, ये सारा अमृत ही है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोय, कौन कबीर कह के गए किसी ने कहा। तो ये जो वर्णन है नारकीय लोगों का वर्णन, या कष्ट भोगना भोगने के लिए भेजा जाता है जीवों को, तो फिर शायद वहां पर स्मरण हो सकता है। दुख में स्मरण सब करे, तो जब दुख होगा कष्ट भोगेंगे तो शायद स्मरण आएगा, नहीं नहीं भगवान का बचाओ, माय गॉड कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो कुछ भूत बातों से नहीं मानने वाले होते हैं। उनको किसकी जरूरत होती है, लाश की जरूरत होती है, तो नरक में पहुंचा के उनको ऐसी लाश, केवल लाश ही नहीं, इसका वर्णन विस्तृत वर्णन है। कहीं पर लाश भी है लेकिन कहीं पर और भी यातनाएं हैं, और इस नारकीय लोकों में जब भेजा जाता है तब ऐसे एक विशेष शरीर भी दिया जाता है, यातना शरीर कहते हैं, स्पेशल। तो उसे अधिक यातना, उस शरीर में अधिक यातना, अधिक कष्ट का अनुभव वो बद्ध जीव करता है। ऐसे ही ये शरीर हरी भाव, ये भौतिक शरीर कष्टदायक है, कष्ट देने वाला है, ताकि हमको कष्ट हो इसीलिए ये भौतिक शरीर, ये हम लोग ये वस्त्र पहने हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, इस शरीर में फिर कष्ट होता है। किस प्रकार का कष्ट, जन्म का कष्ट है। इस शरीर में बुढ़ापे का कष्ट है, इस शरीर में व्याधि का कष्ट है, और फिर मृत्यु का कष्ट है। ये चार मोटे मोटे नाम लिए हैं वैसे, कष्ट ही कष्ट है। पदम पदम यद विपदाम नतेषाम, पग पग पर इस शरीर में इस संसार में कष्ट भोगने पड़ते हैं, लेकिन फिर एक विशेष अनुभव, कष्ट का अनुभव तो नरकों में होता है। तो इस या अन्य लोकों में, नरक के अलावा अन्य लोकों में जो कष्ट तो है ही, आ ब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिन अर्जुन, भगवान भगवान कहे आ ब्रह्म भुवना लोको, आ ब्रह्म मतलब ब्रह्म लोक तक, कहां से कहां तक, मतलब नरक लोक से ब्रह्म लोक तक कष्ट ही कष्ट है। फिर नाम लिया पुनः पुनरावर्तिनो, यह जो पुनरावृत्ति है, जन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। वाह, तो संसार में कष्ट है, इस शरीर में भी कष्ट है, फिर जीव को एक विशेष शरीर यातना शरीर देके नरक लोक की यात्रा करवाई जाती है, इसका वर्णन यह सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और इस 26वें अध्याय का शुरुआत में बोर्ड पर फलक पर एक श्लोक तो लिखा है, पहला प्रथम श्लोक, लेकिन उसके पहले इस अध्याय का सार, कथा सार भी है, इसको हम पढ़ेंगे। तैयार हो जाइए। उसे पहले ही पता चलेगा ऐसे ऐसे कष्ट वा भोगने पड़ते हैं, तो शायद इन बातों से हम मान जाएंगे, सुन के ही उन लोगों में किस प्रकार का कष्ट होता है, जो होता ही है, ये हकीकत है, कल्पना नहीं है। नरक कोई काल्पनिक लोक या स्थान नहीं है। कई लोग, कई स्वामीज भी एक इंडिया के प्रसिद्ध स्वामी हुए, नेशनल स्वामी, कभी कभी इस कौन के बताओ नेशनल स्वामी, तो उनका भी विश्वास नहीं था, हाय स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताललोक इसी पृथ्वी पर ही है, अलग से कोई मृत्युलोक या नरक लोक नहीं है, ऐसा आपने भी सुना कि नहीं? हमने तो कई बार सुना पढ़ा भी, आप तक ये समाचार पहुंचा कि नहीं? ऐसा प्रचार करने वाले है, नरक लोक नहीं है, नरक यही पर सब, नरक यही है, स्वर्ग यही है, स्वर्ग भी नहीं है अलग से, नरक भी नहीं है, स्पेशली नरक नहीं है। लेकिन ऐसे कहने से नरक नरक का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, किसी के कहने पर कि नरक नहीं है तो नरक समाप्त हुआ, या था ही नहीं, या था भी तो हमने कहा नरक नहीं है तो नरक फिनिश्ड समाप्त हुआ, ऐसा नहीं होगा। जब कोई खरगोश का पीछा कोई शेर कर रहा है तो खरगोश दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है और पीछे शेर छलांग मार के, एक शेर की छलांग में तो खरगोश को तो 100 छलांगें मारनी पड़ती है, तो कहाँ तक दौड़ सकता है। दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, शेर पीछा नहीं छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है। तो फिर ऐसा समय आता है, ये कुछ अनुभव होगा, तो इसीलिए उदाहरण भी है, प्रभुपाद भी कहा करते थे। फिर खरगोश क्या करता है, थोड़ा गड्ढा बना लेता है, दौड़ते दौड़ते थोड़ा रुक जाता है, गड्ढा बना लेता है, अपने सिर को उस गड्ढे में बंद कर देता है। और फिर कहते शेर वगैरह कोई नहीं, शेर कल्पना है, शेर था ही नहीं, शेर है ही नहीं, आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं। तो फिर क्या, ऐसे उस खरगोश के सोचने से शेर का अस्तित्व समाप्त होगा या शेर वहां पहुंचना पहुंचेगा नहीं, जरूर पहुंचेगा, पहुंचता ही है, और वहां से उसकी पूंछ को और फिर सारे शरीर को बाहर निकाल देगा अपने पंजे के साथ, या तो मनुष्य की ये प्रवृत्ति वैसी ही है। ओ नरक नहीं है, नरक नहीं है, किसने देखा नरक नहीं है, नरक नहीं है, नरक की यातना नहीं है, ऐसे कहने वालों को यमदूत दिखाएंगे, नरक का दर्शन कराएंगे। एक दिन कहने वाला नरक नहीं है, नरक नहीं है, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट बर्थ सीधे कहां की यात्रा, नरक लोक की यात्रा। फिर वहां इंटरव्यू ले सकते हैं उस व्यक्ति का, तो तुमने कहा था कि नरक नहीं है, अब कहो है कि नहीं। हाँ, मैं तभी नरक में ही तो हूं। तो सुखदेव गोस्वामी इस सारे ब्रह्मांड को भी केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम को ही वे नहीं जानते, केवल उन्हीं को ही नहीं जानते, इस ब्रह्मांड को भी जानते हैं भली भांति। या सुखदेव गोस्वामी भूगोल को भी जानते हैं, खगोल को भी जानते हैं, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोस, खगोल, ऑस्ट्रोनॉमी। सुखदेव गोस्वामी ऑस्ट्रोनॉमर है, वे शास्त्रज्ञ है, इज अ साइंटिस्ट, उनकी बातें साइंटिफिक बातें हैं, यथावत जो भी जहां भी है उन सबको भली भांति जानते हैं सुखदेव गोस्वामी। ज्ञाताओं में से द्वादश बारह वैज्ञानिक है या विज्ञान को जानने वाले, द्वादश महाभागवत है उसमें सुखदेव गोस्वामी भी एक प्रधान भागवत महाभागवत तत्ववेत्ता और सब कुछ वेत्ता, सब बातों को जानने वाले, तो सारे ब्रह्मांड को जानते हैं। तो वह जो जानकारी या ऑस्ट्रोनॉमर कभी नहीं है, कॉस्मोलॉजिस्ट को भी नहीं है, वो जानकारी वो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त है। ये सारा ज्ञान वेदों से होता है। ओ वेदज्ञ है सुखदेव गोस्वामी, त्रिकालज्ञ है सुखदेव गोस्वामी, ओके तो हुआ। इस अध्याय में ये बताया गया है कि पापी मनुष्य किस प्रकार विभिन्न नरकों में जाता है, जहाँ यमराज के सहायक विविध प्रकार से उसे दंड देते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में तीसरा अध्याय 27वां श्लोक में कहा गया है, प्रकृतेः क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। इसी श्लोक का अनुवाद पहले और फिर आगे सार चलता रहेगा। मोहग्रस्त जीवात्मा तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को ही सारे कार्यों का कर्ता सोचता है, जो कि वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नियम से परे मानता है। कौन मानता है नियम से परे? मूर्ख व्यक्ति मानता है, विमूढ़ात्मा। वह सोचता है कि ईश्वर अथवा कोई नियामक सिद्धांत नहीं है और वह जो चाहे कर सकता है। किसने देखा है की बात, किसने देखा है? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत् कुतः, किसने देखा है ये पुनर्जन्म और पाप का फल भोगना होता है, अगले जन्म में भी भोगने के लिए वशीभूत किया जा सकता है, लेकिन चारवाक और कंपनी, चारवाक एक मंडली है, वो वेकदा किसने देखा है? कुतः पुनरागमनो भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। प्रभुपाद रशिया गए तो वहाँ कोटास्क्वी नामक एक प्रोफेसर से मिले, मॉस्को यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर थे, तो उन्होंने भी वही बात कही जो चारवाक ने कही थी। ऐसा प्रचार बिना पढ़े ही, चारवाक सिद्धांत बिना पढ़े ही ऐसा प्रचार तो संसार में है। तो उन्होंने भी कहा, स्वामी जी When body is finished, everything is finished. जब शरीर समाप्त होता है तो समाप्त हो गया, आगे कुछ है ही नहीं। Everything is finished. सब समाप्त, मतलब उनको पता ही नहीं है। अरे बहु, शरीर समाप्त हुआ तो स्थूल शरीर तो समाप्त हुआ, मन बुद्धि अहंकार तो समाप्त नहीं हुआ। लिंग शरीर कहते, लिंग शरीर, स्थूल शरीर और फिर लिंग शरीर, लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं हुआ और आत्मा तो समाप्त होने वालों में से है ही नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते, भगवान स्वयं ज्ञान दे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बॉडी इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज नॉट फिनिश्ड। शरीर समाप्त हुआ, सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं हुआ, और आत्मा तो समाप्त होता ही नहीं, तो क्या ये मूर्खों क्या कह रहे हो, सब कुछ समाप्त हुआ, या किसने देखा है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म लेने के लिए बचा ही कौन है, ऐसा उनका कहना होता। देह तो भस्म हो गया, राख हो गई, अब कौन जन्म लेगा, ये शरीर बस कफ पित्त वायु का मिश्रण है, वह या पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, तो पृथ्वी पृथ्वी में और आकाश आकाश में और तत्व और तत्वों में, बाइबल में भी कहा है, समझना था, यू बिकम पृथ्वी से बने हो और पृथ्वी में प्रवेश करोगे, फिर लीन होंगे, पृथ्वी से बने हो शरीर, इस प्रकार अनेक पाप कर्म करता है जिसके कारण वह जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय परिस्थितियों में रखा जाता है, जिसके जिससे प्रकृति के नियमानुसार उसे दंडित किया जा सके। प्रकृति के नियमों के वश में रहकर भी वह ज्ञान वश अपने को स्वतंत्र मानता है, पूरा पारतंत्र है, पारतंत्र पार औरों का तंत्र, या स्वतंत्र नहीं है जी, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, परतंत्र। फिर वो माया का और फिर कृष्ण का, ऐसे दो तंत्र है, दो व्यवस्थाएं हैं, तो किसी भी अवस्था में जीव स्वतंत्र नहीं होता, या तो प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुण और उसके नियम के अनुसार वो चलता है, इसको चलना ही पड़ता है, और फिर दूसरा महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रितः, वो दैवी प्रकृति का आश्रय ले सकता है, दैवी प्रकृति के वशीभूत होके एक वो एक स्थिति है, और ये जो बहिरंगा शक्ति त्रिगुणमयी माया है उसके वशीभूत होके, इस प्रकार ये दोनों अलग अलग तटस्थ जो जीव है, लेकिन दोनों में से जो कृष्ण पर निर्भर रहना, कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के आश्रय या उसके नियंत्रण में रहना जीव के लिए श्रेयस्कर है, श्रेय है उसमें। हरी हरी, हरे कृष्ण। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, बिल्ली का छोटा बच्चा कभी कभी वो या बिल्ली के मुंह में बिल्ली के मुंह में कभी कभी अपना अपना बच्चा ही होता है, छोटा बच्चा बिल्ली का, म्याओ म्याओ छोटा बच्चा जब करता है, तो उसकी माँ जहाँ भी है, आपके बच्चे तो मम्मी मम्मी कहते हैं, तो लेकिन बिल्ली के बच्चे क्या मम्मी नहीं कह सकते, म्याओ म्याओ, आगे माँ माँ मम्मी कहेंगे, अभी तो अभी नहीं कह सकते, तो लेकिन भाव वही है, ओ मम्मी ओ म्याओ म्याओ, मुझे ले ले जाओ, म्याओ म्याओ म्याओ, मेरी ओर आ जाओ, म्याओ म्याओ म्याओ। तो उसको इतना छोटा होता है, कभी उसको हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, या एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकता, एक मंजिल से दूसरे घर उसने मंजिल नहीं पहुंच सकता, तो म्याओ म्याओ करता। तो फिर मम्मी आती, उसकी मम्मी आके उसको पकड़ती है अपने दांतों में, पकड़ दिया अपने। तो वो एक अनुभव रहा, बिल्ली के बच्चे का अनुभव। और फिर किसी समय वो बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, तो दो अलग अलग अनुभव है। बिल्ली का, कैट का जो किटन कहते हैं, किटन किटन, तो उसका जो अनुभव एक अनुभव है, और बिल्ली के मुंह में चूहा होना और चूहे का जो अनुभव, दो अलग अलग अनुभव है। दोनों को भी पकड़ा गया है, दोनों भी वैसे एक ही जबड़े में है, स्वतंत्र नहीं है, पारतंत्र है वहां। लेकिन तो जीव को, जीव कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन प्रकृति के जंजाल में या जबड़े में जो फंस जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसका अनुभव उस चूहे का जो अनुभव, बिल्ली के मुंह में चूहा, वैसा वो अनुभव है, माया जाल में फंसने का जो अनुभव। और दूसरा अनुभव, कृष्ण पर निर्भर करो, कृष्ण के शरण में आओ। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रितः, दैवी प्रकृति का आश्रय लो। दोनों प्रकृति है, प्रकृति क्रियमानानि गुणै, गुणमयी प्रकृति, गुणमयी प्रकृति, त्रिगुणमयी प्रकृति, और फिर ये दैवी प्रकृति। तो स्वतंत्र तो नहीं है, तटस्थ जो जीव है, तटस्थ, दोनों में से एक प्रकृति के अधीन उसको रहना ही होगा। लेकिन दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है तो ऐसे वही स्थिति सही है। स्थितोस्मि, जिसको अर्जुन कहे, स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूं, स्थिर हो गया मैं, जब उसने भगवान की शरण ली और जब कहा करिष्ये वचनम तव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं, तब अर्जुन स्थितोस्मि, अब स्थितोस्मि, मैं स्थित हो गया। ये नियम तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य भी तीन प्रकार के प्रभावों के अंतर्गत कार्य करता है। अपने कर्मों के अनुसार वह इस जीवन में या अगले जीवन में यातना भोगता है, तो उसके कर्म उसको छोड़ेंगे नहीं, कर्म पीछा करते ही रहेंगे। और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो यातना भोगनी ही होगी। कहते जब वन से या खेत से या जहां से भी गाय गौशाला लौटती है, तो जो बछड़े होते हैं जिनको गांव में या खेत में या वन में नहीं भेजा जाता, छोटे बछड़े, तो गाय जब लौटती है तो बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो एक एक बछड़ा, गायों की बड़ी भीड़ है और बछड़े भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तो बछड़ों को छोड़ दो तो कुछ ही मिनटों में क्या होगा, हर बछड़ा अपनी जो माँ है, करस्पॉन्ड करने वाले, जिसके साथ उसका संबंध है, उस गाय के पास वो बछड़ा पहुंच जाता है। वैसे ही हमारे जो हमने किए हुए कर्म और इसका जो यातना है, परिणाम है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, करस्पॉन्डिंग, वो जरूर शेक हैंड करेगी, जरूर मिलेगी हमें रास्ते में कई। हमारा कर्म आपको नहीं मिलेगा और आपका कर्म हमें नहीं मिलेगा, आपका कर्म आपको ही मिलेगा या कर्म का फल आपको ही मिलेगा, मेरा हमको हमें मिलेगा, इस प्रकार की व्यवस्था है। हरी हरी। धार्मिक पुरुष नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वे भिन्न प्रकार से कर्म फल भोगते हैं। तो नास्तिक पुरुषों के लिए या कुछ नियम है और आस्तिकों के लिए, धार्मिक पुरुषों के लिए दूसरे नियमों के अनुसार कार्य अलग है तो उसका फल भी अलग है। कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कार्य और कारण, इसका संबंध होता है, बहुत बड़ा सिद्धांत। कार्य और कारण, कार्य कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे कार्य कारण, या थोड़ा उल्टा है, कार्य कारण, पहले क्या होना चाहिए वैसे कारण होना चाहिए, कारण कार्य, कारण कार्य, कारण है फिर कार्य, फिर वही कार्य कारण बनेगा, फिर आगे का कार्य होगा, आगे का कार्य ही फिर कारण बनेगा, फिर आगे का कार्य होगा। आप समझ रहे हैं, इस प्रकार चेन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक कारण फिर कार्य, वो कार्य ही कारण, फिर कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन। तो इसके नियम बने हैं, ये एक्शन होगी, ये कार्य होगा तो इसका परिणाम ही निकलेगा, इसका या दुष्परिणाम या सुपरिणाम, सही परिणाम, आई मीन सुखद परिणाम भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों परिणाम ऐसे भौतिक परिणाम है, भौतिक प्रक्रिया, प्रक्रिया नहीं प्रतिक्रिया, प्रक्रिया अलग, प्रक्रिया मतलब क्रिया, प्रक्रिया प्रकृष्ट रूपे ने की हुई क्रिया, प्रक्रिया कुछ विशेष क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया अगेंस्ट, उस क्रिया का परिणाम। एनीवे ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, इसके साथ हमारे सिद्धांत और तत्व ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। तो धार्मिक पुरुष नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वे भिन्न प्रकार से कर्म फल भोगते हैं। तो अजामिल वैसे इसके तुरंत बाद जो अध्याय का अध्ययन होगा वो अजामिल प्रसंग है, छठवें स्कंद का प्रथम अध्याय। जब पूरा वर्णन होता है इस नरकों का और नरक की यातनाओं का, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न, कोई उपाय है, कोई उपाय है, ताकि लोगों को ऐसे यम यातना या नरक की यातना कष्ट भोगना ना पड़े, कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन है। राजा परीक्षित का हृदय थोड़ा द्रवीभूत हुआ है और दया भाव उत्पन्न हुआ है। इतना कष्ट भोगना पड़ता है जीवों को, मैंने सुनी तो लिया, हाँ हाँ पड़ता ही होगा, आप जो भी कह रहे हो सच ही कह रहे हो सुखदेव गोस्वामी जी, तो इससे कोई बचने का कोई उपाय है? तो फिर वैसे हाँ हाँ उपाय है, तो मैं एक इतिहास सुनाता हूं। सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण देता हूं मैं, तो फिर अजामिल का सारा जीवन चरित्र वो प्रसंग सुनाए सुखदेव गोस्वामी। और उसमें उपाय आ गया, तो धार्मिक प्रभुपाद लिखे हैं यहां, धार्मिक पुरुष नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं। तो हुआ तजामिल तो पापी था, उसका सारा रिकॉर्डिंग हुआ था, हमने पाप किया है किसने देखा है, कुछ तो खुल्लम खुल्ला भी पाप कर रहा था, कुछ छिप छिप के पाप करता होगा। तो ऐसे यह वर्णन आया इस अजामिल प्रसंग में, तो कोई पाप होता है तो कोई विटनेस की जरूरत होती है, कोई साक्षी है। तो यमदूतों ने कहा हाँ साक्षी है, साक्षी है, कई सारे साक्षी है, उनकी लिस्ट उनकी सूची भी उन्होंने दी हुई है। ये सूर्य भी साक्षी, दिन भी साक्षी है, रात भी साक्षी है। फिर बोलो, हवा जो बहती है जहां पाप किया वहां से कुछ हवा आगे बढ़ी, तो उसने भी नोट किया और रिपोर्टिंग होता है, वायु देवता की रिपोर्टिंग होती है, सूर्य की रिपोर्टिंग होती है, चंद्रमा की रिपोर्टिंग होती है, तो उनके क्या लिस्ट दी हुई है, आप जब वहां पहुंचोगे तो हुआ। तो अजामिल ने नारायण 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 कहा, तो वैसे पापी था तो यमदूत पहुंच गए थे। वैसे यमदूतों को जब देखा तभी तो इस अजामिल की धोती पीली हुई, मलमूत्र दोनों भी पीले होते, इसीलिए पीली का जिक्र होता है। तो लेकिन नारायण का नाम लिया तो नारायण का नाम सुन के नारायण के दूत विष्णु दूत भी पहुंच गए, कोई नारायण का भक्त कष्ट में है, नारायण को पुकार रहा है, तो नारायण के दूत विष्णु के दूत भी पहुंच गए। तो विष्णु दूतों ने आके उनको रोका, एक स्टॉप करो। उनके पास सारे हथियार थे, पद्मशंख गदा चक्र धारण करते हैं, भगवान के परिकर भी वैकुंठ में। तो विष्णुदूत भी बड़े सुंदर थे और ऐसे चिन्ह, विष्णु के चिन्ह भी वे धारण किए हुए थे। तो उन्होंने अपने कैसे चक्र से, अपने गदा से प्रहार करने का, ए रुको। तो वैसे अजामिल, नॉट अजामिल, ये यमदूतों ने कहा था, नहीं नहीं नहीं, हमको ले जाना होगा, इसको ले जाना होगा, हमें इतना बड़ा पापी, तथईनम दंडपानी सकाशम कृत किल्बिषम नेश्यामः, ले जाएंगे नेश्यामः, वो तीन थे इसलिए बहुवचन में नेश्यामः, हम इसको ले जाएंगे। अकृत निर्वेशम, और इसने पाप किए लेकिन प्रायश्चित नहीं किया, वो पाप का प्रायश्चित नहीं किया इसने, इसलिए ले जाएंगे। यत्र दंडे न शुद्ध्यति, यत्र वहां पर यमलोक में दंडे न, दंडे से पीटेंगे, या और भी नाम तो दंड का लिया है, या दंड कई प्रकार के दंड, दंडे से दंड या और प्रकार से दंड, वो दंड जब मिलेगा तो शुद्ध्यति, यत्र दंडे न शुद्ध्यति। तो ये यम यातना का भी उद्देश्य है शुद्धिकरण, फिर वो सही पटरी पर आ जाएगा, इसको सीधा कर देते हैं, वह नरक में उसको सीधा करेंगे, उसने बहुत पाप किए, सीधा करेंगे या शुद्ध करेंगे। यत्र दंडे न शुद्ध्यति, पाप किया और कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, प्रायश्चित पाप करो फिर प्रायश्चित करो। हमारे धर्म में कहो, हमारे धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित भी एक धर्म का अंग है, धर्म के विधि विधान है। अभी मैं देख रहा था तो हैरान हो गया, कितने बड़ा विभाग है प्रायश्चित, एक बहुत बड़ा विभाग है कर्मकांड सेक्शन ऑफ द वेदस, कर्मकांड के अंतर्गत ये यज्ञ, ये व्रत, ये बलि, ये करो, वो करो, वो करो, और हर पाप के लिए, जैसे हर पाप के लिए जैसे 28 अलग अलग नरक है, ये पापी इस नरक में, ये पाप किया उस नरक में, ये पाप किया उस नरक में, ये पाप किया इस नरक में, या फिर इस नरक से फिर उस नरक से फिर उस नरक से उस नरक, ऐसा लग। तो जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के पाप भिन्न भिन्न नरकों में पहुंचा देते हैं, तो उसे बचने के लिए भिन्न भिन्न प्रायश्चित है। ये पाप तो किया लेकिन पाप का फल मतलब नरक की यात्रा, नरक की यातना ये भोगना न पड़े, इसलिए प्रायश्चित होते हैं। तो वह ये यमदूत करे, इसने पाप तो खूब किया लेकिन कोई प्रायश्चित नहीं किया, इसीलिए हमको इसको ले जाना होगा। यत्र दंडेन शुद्ध्यति, तो उसका शुद्धिकरण होगा। स्वच्छ होगा, पूरा तो नहीं। ओके, तो हुआ, तो ये बात जब विष्णुदूतों ने सुनी कि इसने प्रायश्चित नहीं किया, तो विष्णुदूत कहे अयम ही कृत निर्वासो, हा हा इसने प्रायश्चित किया है। यमदूतों ने कहा था कि अकृत निर्वेशम, इसने प्रायश्चित नहीं किया है, ऐसा यमदूत कहे थे, लेकिन विष्णुदूत कह रहे नहीं 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 इसने उसने प्रायश्चित किया है। अयम ही कृत निर्वेशो, और इसी जन्म में इसने जो पाप किए हैं उसके लिए प्रायश्चित नहीं, जन्म कोट्या, इसके कोटि कोटि करोड़ों जन्मों में जो भी इसने पाप किया, अंहसाम पाप कर्मों के लिए इस अजामिल ने क्या किया है, प्रायश्चित किया है। किस प्रकार का प्रायश्चित किया? तो यमदूत ने कहा हमने तो कोई देखा नहीं, न तो कोई यज्ञ किया, न तो कोई व्रत किया, न तो कोई अनुष्ठान, कोई हमने तो देखा सुना पढ़ा नहीं, इसने क्या किया, कौन सा प्रायश्चित किया, इसीलिए तो हम ले जा रहे हैं इसको। लेकिन विष्णुदूत कहने नहीं नहीं इसने प्रायश्चित किया है, कौन सा प्रायश्चित, यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे है हरेर नाम, इसने हरि का नाम लिया, हो गया प्रायश्चित। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो इस अध्याय में अगले स्कंद के इस अजामिल प्रसंग में ये हरि नाम का महिमा गाया है। और ये हरि नाम हरेर नामैव केवलम, हरि नाम ही सर्वोच्च प्रायश्चित है, ये सिद्ध किया है। साधारण प्रायश्चितों से भी ये अधिक बेहतर या बढ़िया या सर्वोत्तम प्रायश्चित ही है नाम संकीर्तन। वो कैसे, तो इसमें समझाया है कि व्यक्ति जब पाप करता है और फिर प्रायश्चित करता है, तो किए हुए पाप का जो भी प्रतिक्रिया या फल उसको मिलने वाला था, कोई दुख कष्ट, उससे तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसके पाप की जो वासना है, पाप की वासना जो है वो समाप्त नहीं होगी। तो पाप किया, प्रायश्चित किया, उस पाप की प्रतिक्रिया रिएक्शन फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाप की वासना, पाप का जो बीज है, पाप के उपरांत जो संस्कार जो भाव उत्पन्न होते हैं मन में भोग वांछा के, वे तो बने रहेंगे तो फिर क्या होगा, पुनः पाप करेगा। पाप की प्रवृत्ति जो है वो समाप्त नहीं होगी, जैसे बांबू, इसमें उदाहरण दिया, जो बांबू होता है, बांबू बांस, उसको काट लो तो फिर कुछ दिनों के बाद पुनः उगाता है। लेकिन ये जो नाम संकीर्तन है या भक्ति है, भगवान की शरणागति है, यह क्या करती है, तापत्रय उन्मूलनम, मूल से उखाड़ देती है। तो उसको रिएक्शन भी नहीं मिलेगी, उसका प्रतिक्रिया भी, पाप की प्रतिक्रिया भी उसको भोगनी नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ उसकी जो पाप की वासना जो है वो भी समूल नष्ट होगी। इसीलिए तो यही धर्म का मर्म है। तो भगवान इसीलिए कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, ओ जो धर्म, वैसे इन इन यमदूतों ने धर्म की बात की है, वेद प्रणहितो धर्मः, वेदों ने प्रेरित किया हुआ धर्म ही धर्म है, और उसके विपरीत अधर्म है। तो धर्म के अंतर्गत, वेद पुराण के अंतर्गत कई सारे कर्म कांड है, ये प्रायश्चित्य है, लेकिन उसका जो फल है या उसका जो परिणाम है टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, उसे पाप की वासना तो समाप्त नहीं होती, पाप में पुनः वो प्रवृत्त होगा, जघन्य गुण प्रतिस्थो ऐसा अधोगच्छन्ति तामसः, भगवान गीता में कहे जो जघन्य 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 पाप और जघन्य, फिर ऐसी जो वृत्ति है पाप की वृत्ति है, अधो गच्छन्ति तामसः, ये तामसिक वृत्ति है, तमगुण रजगुण सत्वगुण, तो अधिकतर पाप अंधेरे में भी होते हैं या दिन में भी हो सकते हैं, तमगुण का भी अंधेरा है, तो वह अधो गच्छन्ति, फिर अधा गच्छन्ति, उनको नीचे भेजा जाता है, जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, जो सत्वगुणी ऊर्ध्वम गच्छति, मध्ये तिष्ठति राजसः, भगवान सिद्धांत या नियम बता रहे हैं। तो जो तमगुणी है, जो पापी है, तो फिर गीता के अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा धर्म भी त्याग दो, और वेद में जरूर कहा है, वो कर्मकांड सेक्शन में जरूर कहा है, ये करो तो ये प्रायश्चित है, इससे फिर ये फल नहीं भोगना पड़ेगा, ये करो, ये व्रत करो, ये यज्ञ करो, ये दान धर्म करो, ऐसे कर्म करो, वो धार्मिक कृत्य भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे धर्मों को त्यागो, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, फिर क्या होगा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा पाप के परिणाम से, और पाप की जो वासना है, पाप की प्रवृत्ति से भी मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मां सोचा डरना नहीं, अब बस मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण मतलब नाम की शरण भी भगवान की शरण है। नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताकहु अपन काजे, या भगवान के विग्रह की शरण में, राधा गोविंद की शरण में। और शरण में आना मतलब केवल आके बैठना नहीं है, प्रार्थना भी है, प्रदक्षिणा भी है, कुछ कर सकते हैं, कुछ सेवा भी है। अर्जुन ने जब शरण ली भगवान की तो अर्जुन ने क्या, करिष्ये वचनम, तब आपके आदेश का पालन मैं करूंगा, मतलब आपकी सेवा करूंगा। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा युद्ध करो, युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध च, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। तो आप, मैं समझा हूं आपकी क्या इच्छा है, क्या एक्सपेक्टेशन आप मुझसे क्या। तो करिष्ये वचनम, तब तो भगवान की शरण मतलब भगवान, भगवान की सेवा भगवान की शरण है। कई प्रकार की सेवा, कई प्रकार की सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारी नवविधा भक्ति, ये सारी सेवा है। तो शरणागति मतलब सेवा, मामैकम शरणम, मेरी शरण में आओ, मतलब क्या, आके बैठ जाओ, के बैठ जाओ। नहीं, वहां से फिर कार्रवाई करनी है। जीव तो कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता, न जातो चित न क्षणम अपि, एक क्षण भर के लिए भी जीव निष्क्रिय नहीं हो सकता। ये क्रियाशील, ये तो जीव का लक्षण है, चलायमान होना, चलना, हिलना, डुलना, उठना, बैठना, ये कई सारी क्रिया जो है, क्रिया वर्ब्स, क्रिया कितनी सारी क्रिया है। संस्कृत में 2000 अलग अलग क्रियापद, धातु, धातु पाठ आता, धातु 2000 एक्टिविटीज, क्रिया, फिर उसके साथ और उपसर्ग जोड़ने से एक एक धातु से भी कई सारे। गच्छ मतलब जाना, लेकिन आ गच्छ मतलब आना, गच्छ जाओ, आ गच्छ आओ, प्रति गच्छ उल्टी दिशा में जाओ। तो गच्छ या गम को लेके फिर कई सारी क्रियाएं हैं। तो मेरी शरण में आओ मतलब, तो जीव तो निष्क्रिय हो नहीं सकता। तो कई सारी क्रियाएं, सेवाएं, तो भगवान के लिए की हुई क्रिया ही सेवा है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो ऐसी की हुई भक्ति, ये कर्मकांड वाला जो धर्म है, जो हिंदू धर्म अधिकतर कर्मकांड ही हो गया। तो नरक में नहीं जाना है, नरक से जाके जाने से बचना है, तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाना चाहते, और स्वर्ग और नरक के बीच में उनका शटलिंग, शटलिंग बिटवीन नरक एंड स्वर्ग, शटल सर्विस होती है ना, शटल, शटल यहाँ से फिर Yatagagi train, well, say going back to Connaught Place or shuttle between यहाँ से वहाँ वहाँ से तो उनकी पहुँच नरक से स्वर्ग तक स्वर्ग से नरक तक स्वर्ग नरक से स्वर्ग तक ये जो नरक और स्वर्ग का चक्र है द्वंद्व है इससे मुक्त होना है तो फिर मामेकम शरणम व्रज करना होगा और यही धर्म है अरे अभी तो आप कहते कि धर्म सर्वधर्मान परित्यान धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युग धर्म की स्थापना के लिए आप प्रकट होते हो चौथे अध्याय में तो आप प्रभु कहे थे आप धर्म की स्थापना के लिए आप प्रकट होते हो लेकिन अभी कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य सारे धर्मों को त्याग दो ये क्या ये समझ में नहीं आता है बड़ा भ्रमित करने वाली बात है एक समय आप कहते हो धर्म की स्थापना आप करने के लिए आते हो अभी अभी कह रहे हो अंत में धर्म सारा धर्म छोड़ दो सर्वधर्मान परित्यज अब लेकिन भगवान मामेकम शरणम व्रज ये धर्म है धर्म संस्थापनार्थाय मतलब मामेकम शरणम व्रज मेरी शरण में आओ यही धर्म है यही धर्म का सार या धर्म का मर्म यही है माम एकम ऐसे पहले मजे अकेले के शरण में जाओ इसलिए हरिर नाम का हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम किसका नाम हरि का नाम सभी हरि नहीं है देवता हरि नहीं है हरिर नाम एव केवलम तो समझो ईश्वर एकला कृष्ण आर सब भृत्य बस अकेले कृष्ण ही ईश्वर या परमेश्वर और सभी तो उनके सेवक है सारे देवता मंडली तो मामेकम शरणम ब्रज तो वह तो अधिक जो धार्मिक कृत्य होते रहते हैं देश भर में संसार भर में हमारे हिंदू जगत में ये सारा ये प्रायश्चित का धर्म या ये कर्मकांड का धर्म यज्ञ इस देवता को प्रसन्न करो उस देवता को प्रसन्न करो ये व्रत करो वो ये नवरात्र ये उपवास करो ये करो चलता रहता गणेश चतुर्थी आ गई व्रत करो दुर्गा पूजा आ गई इसी को भगवान का सर्वधर्म परित्यज्य परित्यज्य इसको त्यागना चाहिए उसी को अपनाया जा रहा है क्योंकि भगवद गीता यथारूप नहीं समझ रहा है भगवद गीता यथारूप एज इट इज फिर समझाने वाले भी तो चाहिए भक्त अगर है और भक्त मतलब कृष्ण का भक्त विष्णु का भक्त भक्त देवी देवता के भक्त को भक्त नहीं कहा कृष्ण भक्त निष्काम अतएव अशांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत सभी अशांत भुक्ति कामी मुक्ति कामी सिद्धि कामी तो भुक्ति कामना का भुक्ति का धर्म है उसके विधि विधान संस्कृत के कई सारे मंत्र तंत्र मिलेंगे आपको अध्याय के अध्याय मिलेंगे भुक्ति कामना के मुक्ति कामना के अध्याय मिलेंगे संस्कृत भाषा में हमारे वेदों में हमारे पुराणों में हमारे शास्त्रों में भुक्ति कामी मुक्ति कामी सिद्धि बहुत बड़ा टॉपिक है और कई सारे सिद्ध पुरुष घूम रहे हैं सिद्धि दिखाते हुए कोई चमत्कार दिखाते हैं तो फिर आप झट से नमस्कार करते हो उनका चमत्कार देखा आपने नमस्कार ठोका तो ये या तो भुक्ति मुक्ति का धर्म सिद्धि का धर्म, सकले अशांत, ये सारे अशांत रहेंगे। कृष्ण भक्त निष्काम, उसकी वासना नहीं रही, निष्काम इस किंचन, मुक्ति मुक्ति। इसीलिए जो भक्ति की परिभाषा है, क्या कहा, अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, उसके पहले अन्य अभिलाषिता शून्यम, वेरी गुड, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान गीता में, ए देखो देखो ये लोग शरण तो ले रहे लेकिन प्रपद्यन्ते अन्य देवता, औरों की शरण ले रहे, और पता है क्यों शरण ले रहे हैं, भगवान करे कामैस स्थैर स्थैर ऋतज्ञाना, उनके मन में खूब कामना है, तीव्र कामना, कामैस स्थैर स्थैर, और उस कामना ने क्या किया, ऋतज्ञाना, उनका जो ज्ञान है चुरा लिया, उनकी बुद्धि को भ्रमित किया इस कामना ने, वासना ने। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति की परिभाषा कही है, अन्याभिलाषिता शून्यम, तो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम मामेकम शरणम, और दुकान में नहीं जाना और मेरे पास आओ। ज्ञान कर्मादि अनावृत, अन्य अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म, ये जो कर्मीज, ये जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो है भुक्ति, तो ये कर्मीज, कर्मीज को वो भुक्ति में होते हैं, और मुक्ति जिनको चाहिए वो ज्ञानी होते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, तो कर्मी ज्ञानी योगी, ये अलग अलग पार्टीज है, कर्मी पार्टी, ज्ञानी पार्टी और योगी पार्टी। योगी नाम अभी सर्वेशम, भगवान कहे सर्वश्रेष्ठ योगी तो मेरा भक्त है। अरे तो भक्ति का प्रचार नहीं है, कर्मकांड का प्रचार है, अन्य अन्य ऐसे धर्मों का प्रचार है, कर्मकांड का प्रचार है, कुछ भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना का प्रचार है, और अधिकतर ऐसे अनुष्ठान होते, धार्मिक अनुष्ठान। तो फिर यमदूत गए, खाली हाथ गए, यमराज के पास गए, तो फिर यमराज ने पूछा ही कैसे हुआ, उसको पापी समझ के हम आपके पास ले तो आ रहे थे, लेकिन वो कोई दूसरे लोग आ गए, कोई ऐसे थे वैसे थे, बड़े सुंदर थे, हम तीन थे तो वे चार थे, उन्होंने कहा गया, हम तो तीन ही थे लेकिन वे चार थे। अब ये भी कहा कि चार क्यों, कि उन्होंने ना रा य ण कहा, चार अक्षर वाला आपका नाम कहा, तो एक एक अक्षर का नाम लेते ही एक एक आ गए सामने, ना कहते एक विष्णुदूत पहुंच गए, रा कहते दूसरे विष्णुदूत पहुंच गए, यह कहते तीसरे पहुंच गए, ऋण कहते चौथे भी आ गए, तो हरे कृष्ण कहेंगे तो कितने आएंगे, बहुत बड़ी टीम आएगी। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ऐसे यमदूतों ने जाके पूछा, यमराज से पूछा, और कितनी अथॉरिटी कितनी है, हमने तो सोचा आप ही तो सर्वे सर्वा हो, और भी कोई है क्या, तो फिर उन्होंने कहा वैसे मेरे ऊपर भी है, विष्णु है, भगवान मेरे ऊपर है, धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। और उस भगवान ने दिया हुआ जो धर्म है, उस धर्म को जानने वाले कुछ लोग हैं, स्वयंभू नारदः शंभु प्रह्लाद जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर वयम से 12, उन्होंने 11 नाम लिए और कहा कि वयम मतलब हम लोग, तो हम मतलब यमराज कह रहे दिया हम लोग मतलब मैं भी, मैं 12वां हूं, ये 11 के 11 हुए और हम लोग कहने से फिर 12वें का उल्लेख हुआ। सो मैं 12वां हूं, मतलब ऐसी कोई आगे ऊपर नीचे नहीं है, ऐसे कहा है वे 12वें, वो पहले भी हो सकते हैं, तीसरे भी या 8वें भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी नम्रता है और उनके नाम पहले कहे उन्होंने और फिर कहा कि हम मतलब मैं भी धर्म को जो भली भांति जानते हैं। तो उनके अनुसार तो यमराज ने फिर एक जजमेंट दिया कि तुम तो आज भ्रमित हुए हो, या जो उसको नहीं लाए तुम खाली हाथ, एम्प्टी पॉकेट आना पड़ा तुमको, तुमको अचरज हो रहा है, ये हुआ क्या? तो अब मैं समझाता हूँ, सुनो और सावधान। तो क्या कही बात? यमराज, यमराज कहे जो महाभागवत, यमराज महाभागवत है, यमराज महाभागवत है, वो वेदज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, और भगवान ने नियुक्त किया है उनको, कोई भी अन्याय नहीं करेंगे वे। तो उन्होंने कहा तानानयध्वम, उनको ले आना, आज से उन लोगों को ही मेरे पास ले आना। अकृत्य विष्णु कृत्यान, जिन्होंने विष्णु या कृष्ण राम के प्रसन्नता के लिए कोई भी कृत्य नहीं किया है, केवल ऐसे लोगों को ही मेरे पास ले आना। और किसको नहीं लेके आना? या कह रहे जिह्वान भक्ति, वो क्या है वही बात, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम अधीयम, या उनको ले आना। तान आन यद्वम, उनको ले आना, तो थोड़ी सी संकेत कर रहे हैं किनको ले आना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम अधीयम, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं है, जो भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, जिन्होंने नहीं किया है, उनको ले आना। ओके, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम, और जिनकी चेतना में भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं है, भगवान के चरणों का जो स्मरण नहीं करते हैं, उनको ले आना। कृष्णाय नो नमति यच्छीर एकदापि, और जो एक समय भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुके हैं, देखो ये झुक गए तो इनको नहीं ले जाएंगे, इनको नहीं ले आना, झुक गए, एक बार भी झुक गया तो उनका नाम यमराज के हिट लिस्ट, यमराज की हिट लिस्ट या यमराज का जो सुपर कंप्यूटर महा कंप्यूटर में सारा फीडिंग होते रहता है, जैसे साक्षी विटनेसेस तो नाम फीडिंग होता है। तो जिसने भी भगवान को नमस्कार किया उनको नहीं लाना है, जो भगवान का स्मरण करता है उसको नहीं लाना है, और जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है उनको भी नहीं ले आना। उनको ले जाने वाले और है, तुमको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी व्यवस्था है। तो एक अध्याय में जो पांचवें स्कंद का कितना 26वां अध्याय में जो नरक की यातना का जो वर्णन है, तो उससे कैसे छूट सकते हैं इसका वर्णन, इसकी विधि फिर अगले स्कंद मतलब छठवें स्कंद के 3 अध्यायों में, प्रथम द्वितीय तृतीय अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी उपाय समझाए हैं कैसे बचा जा सकता है नरक यातना से या नरक लोगों की यात्रा से। और इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत कथा में यह हरि नाम का महिमा की स्थापना हुई है, हरि नाम का गौरव सुखदेव गोस्वामी गाए हैं। दाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो थैंक यू। कल और महिमा के हरि नाम महिमा के वचन कहे जा सकते हैं, सार बचा हुआ है, इस अध्याय का सार भी आगे पढ़ेंगे और हरि नाम का महिमा उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका भी श्रवण।